नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण हैं। शेष पद्म पुरस्कार बाद में समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर है। कल नई दिल्ली में अमेरिका से 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में भावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमरीका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम में गृहमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से किसी भी जनजातीय अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजातीय कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है।
नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आज इस मंच से इस जनजाति महाकुंभ को कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फलता विधानसभा पुनर्चुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करने पर देवांशु पांडा को बधाई दी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रति प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा है कि छात्रों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह फैसला किया गया है। आज उत्तर पुस्तिका की आखिरी स्कैन प्रति उपलब्ध करा दिए जाने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित हो जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस महीने की 28 तारीख को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा है कि सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल अजहा बकरीद की तिथि में बदलाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। आईपीएल क्रिकेट में अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।